सत्यार प्रकाश के सातवें चैप्टर के सेवन चैप्टर का आज आठवां भाग है। हम चर्चा कर रहे थे ईश्वर की पूजा करें तो उसका क्या लाभ होता है, और ईश्वर की पूजा की जो तीन अलग अलग डायमेंशंस हैं, अलग अलग पाथ हैं, स्तुति मतलब अप्रिसिएशन और ग्लोरिफिकेशन, प्रार्थना प्रेयर और उपासना कम्युनियन, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो उपासना के प्रसंग में का अर्थ होता है ईश्वर के पास बैठना। ईश्वर तो हमारे आपके अंदर भी हैं, तो बैठने का मतलब कहीं जाकर बैठना नहीं होता है, उसको रियलाइज करना जो हमारे अंदर ऑलरेडी है पर हम उसे रियलाइज नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम बाकी चीजों में व्यस्त रहते हैं। जैसे कभी कभी हम अपने घर के बात में रिलेटिव्स को फ्रेंड्स को भी इग्नोर कर जाते हैं, कभी कभी और चीजों में जब हम बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं तो हम अपने बहुत क्लोज फ्रेंड को रिलेटिव्स को या फैमिली मेंबर्स को इग्नोर कर जाते हैं तब तक जब तक जिस पर हम बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं वो हमसे दूर ना हट जाए या वो खत्म ना हो जाए या उल्टा ना पड़ जाए, और अचानक हमें लगता है कि मैंने इतने सालों से इसको इग्नोर किया जो कि मेरे सबसे नजदीक है। इसी तरह जो हमारे अंदर ईश्वर है, हम अपनी प्रायोरिटी की जो प्रेफरेंसेस है वो अलग अलग दुनिया की चीजों में देखने रखने के कारण हमारे सबसे नियरेस्ट होने के बावजूद भी हम उससे ध्यान नहीं दे पाते, और जब हम चीजों के प्रति ध्यान देने लगते हैं उसी को कहते हैं उपासना की प्रक्रिया, यानी द प्रोसेस ऑफ कम्युनियन। उसमें स्वामी जी पतंजलि के योग दर्शन के जो आठ अंग है इसको कोट करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। इन पांचों के बारे में हमने चर्चाएं की, यम क्या है, नियम क्या है, आसन प्राणायाम और प्रत्याहार इनका क्या यूज है। प्रत्याहार का मतलब होता है जब सेंसेस को इंद्रियों को बाहरी दुनिया से हटा के अंदर की ओर लेने की प्रयास करे, उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है इसे हम धारणा कहते हैं। धारणा का अर्थ होता है द स्टेट ऑफ कंसंट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग और फिक्सिंग द अटेंशन ऑफ माइंड एंड टू वन ऑब्जेक्ट और प्लेस। जीवन तो जब बाहरी दुनिया से आप अपने मन को हटाते हैं, और जैसे पिछले बार इसी के एक कहानी के साथ हमने बात को खत्म किया था कि जैसे बेताल होता है उसको काम चाहिए, अगर आप उसको एंगेज नहीं रखेंगे वो हमें खा जाता है, इसलिए माइंड को भी एंगेज करना जरूरी होता है। और अगर नहीं करते, खाली दिमाग शैतान का घर हिंदी में जैसे आप सुनते हैं, तो फिर हम दुनिया गॉसिप में बिजी होते हैं, दूसरों की बुराइयां करने में बिजी रहते हैं वगैरह वगैरह। इसी तरह जब हम बाहरी दुनिया से अपने आप को मन को हटाते हैं, अगर हमने और कहीं लगाने की कोशिश नहीं की तो उसका परिणाम क्या होता है, हम अपने रिलीजियस लीडरों से देखते हैं जो किसी परिस्थिति के कारण घर परिवार छोड़ के सन्यासी या कुछ बन जाते हैं, पर क्योंकि वो अपने मन को और कहीं जहां लगाने हैं वहां नहीं लगाते हैं तो फिर मन दोबारा वहां जाने की कोशिश करता है जिसको छोड़कर आए थे, क्योंकि दोबारा जा नहीं सकते हैं, पब्लिकली उन्होंने अपने कपड़े बदल दिए, जो भी संन्यास ले लिया पब्लिक में उनका एक रेपुटेशन बन गया, दोबारा वो शादी नहीं कर सकते, घर नहीं बसा सकते, तो फिर हिपोक्रेसी यहीं से शुरू होता है और करप्शन यहीं से शुरू होता है। तो मन को बाहरी दुनिया से जैसे ही हटाएं उसको कहीं लगाना जरूरी होता है, और जब हम मन को अंदर कहीं उसको होल्ड करने की कोशिश करते हैं, वो जो कोशिश है, वो जो एफर्ट है, उसको धारणा कहते हैं। जब धारणा कंटिन्यूअसली चलती रहे और उसमें एक कंस्टेंट स्टेबिलिटी आ जाए, एक स्थिरता आ जाए, एक जगह पर हम मन को देर तक लगा सकते हैं, उसे हम ध्यान कहते हैं। ध्यान उसका नेक्स्ट स्टेप होता है। मेडिटेशन इज सस्टेन्ड कंसंट्रेशन। आप दो मिनट के लिए कहीं आप मन को लगा देते हैं पढ़ाई में लगाए, कहीं भी लगाए, अंदर लगाए, फिर मन भाग जाता है। अगर वो प्रोसेस लंबे समय के लिए हो जाता है, अगर वो सस्टेन कर जाता है, उसी स्टेट का नाम ध्यान हो जाता है। ध्यान इज द अपर स्टेट ऑफ धारणा। और ये नहीं कि जनरली जो हमारे बड़े गलत फहमियां है कि योगी बनने के लिए या ये सब चीजें करने के लिए हमें बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बहुत मेहनत, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी इवन स्पिरिचुअलिटी में कोई कभी जरूरत से कोई ज्यादा डिमांड नहीं होता है, जैसे बड़ा मिसपरसेप्शन है। आप अपने लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहें, जब अचीव करना चाहते हैं कि एवरेज नहीं बनना चाहते हैं, इवन आप बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत नाम कमाना चाहते हैं, तब भी आपको बहुत कुछ चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। जब आपका एक ही गोल है कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, तो आप 12, 14, 18 घंटे मेहनत करते हैं। नेचुरली आप नोइंगली अननोइंगली आप अपने फैमिली को इग्नोर करते हैं। वो डिटैचमेंट यहां फैमिली के साथ अपने आप होता है, क्योंकि पैसे से आप अटैच्ड हो जाते हैं। आपका अटेंशन वहीं पर रहता है, आपका माइंड का फोकस वहीं रहता है, एक एक चीज को आप बारीकी से समझते हैं। अगर आपका आपका गोल है कि मुझे बहुत बड़ा ज्ञानी बनना है, तो आप 15-17 घंटे पढ़ाई करते हैं, रिसर्च करते हैं, आप साइंटिस्ट हैं, फिलोसोफर हैं, जो भी हैं। अगर आपको लगता है मुझे फैमिली के ध्यान देना है, तो आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन में कंप्रोमाइज करते हैं। आपको अगर लगता है मुझे अपने बच्चों को ध्यान देना है, तो बहुत सारे माताएं नौकरियां छोड़ देती हैं, क्योंकि गोल फिक्स होना जरूरी है। और कोई भी लाइफ में गोल आप बिना कुछ सैक्रिफाइस किए अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह ऐसा नहीं कि जब आप अध्यात्म में आते हैं तो कोई आपसे बहुत बड़ा डिमांड होता है, ये नेचुरल है। मन को कहीं लगाएंगे तभी आप फिजिकली आप उसमें इन्वॉल्व होंगे। अगर मेंटली इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और मेंटली इन्वॉल्वमेंट तभी होता है जब लाइफ में उसके लिए आपकी प्रायोरिटी बनती है। जिन मां बाप के लिए बच्चे के लिए प्रायोरिटी होते हैं, तो वो फिर अपने जॉब के साथ भी बहुत सारे लोग कंप्रोमाइज करते हैं। जिनके लिए अपना फ्यूचर ज्यादा बड़ा होता है, वो अपने जॉब को ज्यादा प्रिफरेंस देते हैं। ये अलग अलग व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि उसका फोकस क्या है, उसका गोल क्या है, और वो किस पर, और उसी के लिए वो ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करता है बाकी चीजों को। वो कितना भी बोले कि मैं प्यार करता हूं या मेरे ज्यादा ये है, एक्चुअली वो उसके रियल लाइफ में वो उसको सेकेंडरी मानता है। और व्यक्ति किस चीज को प्यार करता है, उससे पता लगता है कि वो कितना टाइम फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली किस चीज में डिवोट करता है, और उसको वही अचीवमेंट मिलता है। बाकी चीजों के लिए उसको रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका गोल वही था। इसी तरह जब हमें किसी को ये लगता है कि नहीं, मुझे उस अध्यात्म में, आत्मा को जानने में, उस सेल्फ रियलाइजेशन में मेरा गोल है, तो वो अपने आप ये सब छूटता जाएगा। और जब आप उस दुनिया से, संसारिक चीजों से मन को हटाते हैं, तो उसको फिर वो नेचुरली और कहीं लगाने की आप कोशिश करेंगे। और जब उस प्रोसेस में आप लगे रहते हैं, जब आप उसमें सक्सीड कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ध्यान। ध्यान की जो अगला स्टेज होता है, अष्टांग योग के जो आठवां जो लास्ट स्टेज होता है, उसे हम समाधि कहते हैं, द डीप अब्सॉर्प्शन। ऐसी स्थिति में जहां हम इतने ज्यादा डूब जाते हैं, फिर जानने वाला द नोअर द परसीवर, जानने लायक द ऑब्जेक्ट ऑफ परसीविंग, एंड द ज्ञान द प्रोसेस ऑफ परसीविंग, ये तीनों का भेद मिट जाता है, तब हमें होश नहीं रहता है कि मैं कहां हूं, क्या हूं। और ये भी कोई अनरियल, कोई यूनिक चीज नहीं है। अभी स्मृति जी वो मैच की बात कर रही थी, और जिन लोग आप में से जिनको क्रिकेट मैच के जो दीवाने हैं, या यहां जो टेक्सास में भी बहुत सारे फुटबॉल है, सॉकर है, और भी बहुत सारे मैच होते हैं, उसके भी बड़े सारे दीवाने लोग होते हैं, और जब वो डूबे हुए होते हैं हारने जीतने के मूड में टीवी के अंदर घुसे हुए होते हैं, ना उनको भूख होता है, ना प्यास होता है, ना घर की कोई बातें समझ में आती है, बिल्कुल वे वन पॉइंटेड हो जाते हैं। जिसको कहते हैं डूबना। जब एक साइंटिस्ट रिसर्च करने में लैबोरेटरी में फंसा हुआ होता है, वो 18-18, 20-20 घंटे, 24 घंटे डूबा होता है, उसको भूख प्यास कुछ पता ही नहीं चलता। जब आप लोग पढ़ाई के समय अपने प्रिपेरेशन करते थे एग्जामिनेशन से पहले, तो दिन रात आपको पता ही नहीं चलता था क्या खाकर आपने पढ़ा, कब सोया कुछ पता ही नहीं था। वो जो डूबते हैं तभी आप, उस समय आपको आपका होश नहीं रहता है। रियल लाइफ में भी होता है, जब आप किसी चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, डूब जाते हैं, फिर आप अपने आप को भूल जाते हैं, आपके जो चारों तरफ के एटमोस्फियर है उसको भूल जाते हैं। तो जैसे ही आप उससे हटते हैं, आप रियल लाइफ में आते हैं, तो फिर आप कॉन्शियस हो जाते हैं। समाधि भी उसी तरह का है, जब आप खुद में इतनी ज्यादा डूब जाते हैं तो जानने वाला, ज्ञान, ज्ञान की प्रक्रिया, सब कुछ मिट जाता है। दैट स्टेट ऑफ माइंड इज कॉल्ड समाधि। और वो जब मैं खुद को जानता हूं, और मैं खुद कौन हूं, जब आप लोगों को बच्चे पैदा होते हैं ना, जो बेबी शावर करते हैं, जात कर्म संस्कार हमारे यहां कहते हैं, पैदा होने के एक दो दिन के बाद, उसी दिन 5-7 दिन के बाद जब आप घर में कोई पूजा रखते हैं, हवन करते हैं, तो उसमें एक रिचुअल होता है कि जो पिता है, जो बाप है, वो तो बच्चे के कान में जाकर के फुसफुस करके बोलता है, विस्परिंग करता है, एक रिचुअल है, मंत्र है। और वो मंत्र ऐसा है कि कोसी कथम ओसी, तुम कौन हो, कहां से आए, फिर वो मंत्र के द्वारा ही आंसर देता है। पिता ही पिता से पुरोहित बुलवाता है, शुद्धोसी शुद्धोसी निरंजनोसी, कि तुम शुद्ध हो, यू आर प्योर, बुद्ध हो, यू आर एनलाइटेड, तुम स्वभाव से ज्ञान हो, ज्ञान स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, निरंजनोसी, तुम स्वभाव से दाग रहित हो, कलंक रहित हो। अब जब तुम्हारे अंदर कलंक लगेंगे, जो इंप्योरिटी आएगी, जो अज्ञान आएगा, हमारे कारण से आने लगेगा। जैसे जैसे तुम बड़े बनोगे, हम तुम्हें सिखाएंगे कि झूठ कहां कहां बोलना है। तुम तो पैदा ही सी, जब भी बोलना सीखोगे तो झूठ सच ही बोलोगे, हमसे ही सीखोगे झूठ कैसे बोलना है, कहां कहां बोलना है। पैदा ही सी बच्चा कभी झूठ बोलना सीखता ही नहीं है, हिपोक्रेसी सीखता नहीं है, वो हम सिखाते हैं, सोसाइटी सिखाता है, फैमिली सिखाते हैं। वो स्वाभाविक रूप से पैदा हुआ तो बिल्कुल शुद्ध, वही उसका ओरिजिनल फॉर्म है। तो हमारा जो स्वाभाविक स्वरूप है, जो नेचुरल फॉर्म है, वो शुद्ध है, वो प्योर है, पवित्र है, वो ज्ञानपूर्ण है, वो आनंद से भरा हुआ है। और जब उस शुद्ध मेरा अपने स्वरूप को, व्हेन आई रियलाइज माई सेल्फ, माई प्योर सेल्फ, एंड व्हाट इज दैट प्योर सेल्फ, दैट इज प्योर ब्लीस द नॉलेज, इट्स नॉट फुल ऑफ ब्लीस, full of knowledge, full of purity, it itself is knowledge, it itself bliss, ये यही आनंद है। ये कोई आनंद से आनंद कुछ अलग, आत्मा अलग, ऐसा नहीं है सज्जन देवियों, ध्यान देखिएगा, आपका आत्मा ही आनंद है। अब जब मैं उस लेवल पर पहुंच जाता हूं, तो मैं उस आनंद में डूब जाता हूं, और वो आनंद दुनिया के करोड़ों करोड़ों तरह के आनंदों से बड़ा होता है। स्वामी जी इसी को थोड़ा समराइज करके उपासना की पद्धति की चर्चा कर रखते हैं। व्हेन अ मैन डिजायर्स टू एंगेज इन उपासना, जब किसी को, हमारे में से किसी को कभी इच्छा हो कि हम उस उपासना करें, ईश्वर की उपासना करें, उसको रियलाइज करने की कोशिश करें, लेट हिम रिसोर्ट टू ए सॉलिटरी क्लीन प्लेस एंड गेट कंफर्टेबली सीटेड। अपने घर में जब भी आपको मन करे, सुबह शाम को छुट्टियों के दिन कभी भी आपको मन करे कि मैं थोड़ी देर के लिए ईश्वर की भक्ति में डूबू, तो एक साफ सुथरा जगह लीजिए, एकांत जगह लीजिए, साफ सुथरा लीजिए, समतल लीजिए, जहां कंफर्टेबली जहां बैठ सकते हैं, देन पहले तो आप प्राणायाम का अभ्यास करें, क्योंकि जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपके जो माइंड है का जो फ्लक्चुएशन है वो आपके आपके अनजाने में वो कंट्रोल होता है, वो स्टडी बनने लगता है। देन प्रैक्टिस द रिस्ट्रेंशन ऑफ द सेंसेस, इंद्रियों को नियंत्रित करने की कोशिश करिए। इंद्रियों को नियंत्रित मतलब इंद्रियां जब बाहर भागने लगे, बाहर भागने का मतलब आपके अंदर जो विचार आने लगे, अलग अलग तरह के विचार आने लगे, उसको रोकने की कोशिश करें। फिक्स द माइंड ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, और क्योंकि मन का स्वभाव है भागना, तो कोशिश करें मन को शरीर के किसी अंग पर लगाने की, वो नाभि में हो, नेवल सेंटर हो, हृदय में हो, गले में, कंठ में हो, आंखों के बीच में हो, या ये कपाल में हो, या स्पाइन में हो, या कहीं भी हो, कोई जरूरी नहीं, देयर इज नो रूल कि आपको यही करना है। आप अपने शरीर के किसी भी अंगों को मन से मन में फोकस करने की कोशिश करिए। जैसे हम यज्ञ से पहले आपको बताते हैं कि आप सांस लीजिए और सांस पर ही फोकस रखिए, या ओम वो मन ही मन जप करते हैं तो उसमें फोकस रखिए। लेट हिम देन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन हिज ओन सेल्फ एंड सुप्रीम स्पिरिट। इसको कहते हैं विवेक। विवेक का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेट करना। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन व्हाट? बिटवीन मैटर एंड सेल्फ। ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है। पहला डिस्क्रिमिनेशन यहीं से शुरू होता है। शरीर में मन भी, माइंड, इंटेलेक्ट, सब कुछ शरीर के पार्ट ही, मैटर में आते हैं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं। सबसे पहला डिस्क्रिमिनेशन सोल और कॉन्शियसनेस और मैटर में रियलाइज करने की होती है। जब ये क्लियर हो जाए, द नेक्स्ट स्टेप इज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन माइंड सेल्फ एंड सुप्रीम सेल्फ, परमात्मा और आत्मा के बीच में जो फर्क है उसको समझने के लिए, उस फैक्ट को समझने के लिए। देन गेट अब्सॉर्ब्ड इन द कंटेम्पलेशन ऑफ द लेटर। उसके बाद उस परमात्मा में अपने आप को डुबाने की कोशिश करिए। जिस तरह आप क्रिकेट मैच के बिल्कुल जो जब एक्साइटमेंट में आप होते हैं, जब आप डूब जाते हैं, जब एग्जामिनेशन से पहले आप पढ़ाई में पूरी तरह डूब जाते हैं, जब मूवी के किसी ऐसे ट्विस्ट में आप बिल्कुल डूब जाते हैं, इसी तरह उसमें आप डूबने की कोशिश करिए। और यही कम्युनियन, यही उपासना का भेद होता है। When a man follows these practices, his mind as well as the soul becomes pure and imbued with righteousness, and by constant increase of real knowledge and discrimination, he reaches the stage of supreme bliss. जो व्यक्ति इस प्रक्रिया से अभ्यास करता है, वो उसका मन शरीर दोनों, ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको जंगल जाना पड़ेगा, कपड़े बदलने पड़ेगा, मंदिर में जाना पड़ेगा, बाबा होना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने रियल लाइफ में कभी भी टाइम निकाल के 2 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जितना भी आप कर सकते हैं उतना हमारे लिए बेहतर होता है। और जितनी आपकी आपकी भक्ति की क्वालिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ाने से फायदा नहीं, जितनी क्वांटिटी बढ़ेगी, जितनी उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, उतना ज्यादा हमारा शरीर, मन, आत्मा शुद्ध होते जाएंगे, और डिस्क्रिमिनेशन, विवेक शक्ति भी बढ़ेगी। सही और गलत, अच्छा और बुरा, रियल और अनरियल को रिकॉग्नाइज करने में आसान होगी। ऐसा नहीं कि अंदर, बाहरी दुनिया में भी आसान होगा। और जब विवेक शक्ति बढ़े तो वो परमानंद को भोगने का मौका मिलता है। और स्वामी जी एक उपदेश करते हैं, इफ ए मैन डिवोट्स इवन हाफ एन आवर ए डे, अगर आधे घंटे भी, शुरू शुरू में तो आप 5-10 मिनट हम लोग कर सकते हैं, अगर बढ़ा करके हम आधा घंटा तक भी हम पहुंच गए, एंड ही वुड प्रोग्रेस स्पिरिचुअली। आप जो स्पिरिचुअली जो प्रोग्रेस होगा हमारे अंदर, वो हम खुद रियलाइज कर सकते हैं, हम खुद उसको विटनेस कर सकते हैं। उपासना के दो टाइप है, दो तरह की उपासना होती है। कभी कभी काफी सारे चीजों पर मिसपरसेप्शंस हैं। एक सगुण और एक निर्गुण। लोग इसको इसके असली अर्थ को भटकाकर अपने ढंग से इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। सगुण का रियल मीनिंग होता है विथ क्वालिटीज, विथ एट्रीब्यूट्स, गुणों के साथ। ईश्वर की भक्ति गुणों, उसके गुणों के साथ किया जाए। निर्गुण का मतलब होता है ईश्वर की भक्ति उसके गुणों के बिना किया जाए। गुण रहित निर्गुण है, विदाउट एट्रीब्यूट्स क्वालिटीज इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड विदाउट हिट्स क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड निर्गुण भक्ति, निर्गुण उपासना। सगुण भक्ति और उपासना का सिंपल मीनिंग है कि वर्शिपिंग गॉड विथ इट्स क्वालिटीज एंड एट्रीब्यूट्स। जैसे जब हम स्तुति करते हैं, जब ग्लोरीफाई करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं ईश्वर को, भजन कीर्तन में भी हम उसको उसको जब ग्लोरीफाई करते हैं तो हम उसके गुणों की चर्चा करते हैं कि वो परमात्मा सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, संसार को बनाने वाला है, पालन करने वाला है, श्रृंगार करने वाला है। इवन ईश्वर को छोड़िए, रियल लाइफ में भी जब आप किसी की तारीफ करते हैं, आप उसकी सगुण तारीफ भी करते हैं, निर्गुण तारीफ भी करते हैं। इवन आप अपने बच्चों की बा एक दूसरे की बा किसी की भी आप तारीफ करते हैं। अब ये भी बोलते हैं कि देखो कितना इंटेलिजेंट है, कितने शार्प माइंडेड है, कितना अच्छा है, कितना भोला है, कितना सिंपल है, कितना इनोसेंट है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये पॉजिटिव, इसको सगुण सगुण स्तुति कहते हैं। इसी तरह आप निर्गुण भक्ति भी, निर्गुण प्रेम भी करते हैं उसी बच्चे को, उसी व्यक्ति को जिसकी आप उसके क्वालिटीज को बताते हुए तारीफ करते हैं, उसी व्यक्ति के कुछ ऐसी चीजें भी बता के तारीफ करते हैं जो नेगेटिविटी है। इस बच्चे में थोड़ा सा भी अहंकार नहीं है, इसे नेगेटिव ये व्यक्ति कभी भी झूठ नहीं बोलता है, ये व्यक्ति कभी भी चोरी नहीं करता है, ये व्यक्ति के अंदर घमंड बिल्कुल नहीं है। तो जब आप नहीं है बोल के तारीफ करते हैं तो ये निर्गुण प्रेम है, निर्गुण प्रशंसा है। सगुण प्रशंसा जब उसके अंदर जो है उसको आप ग्लोरीफाई करते हैं। ईश्वर के अंदर जो नहीं है क्या नहीं है? ईश्वर के अंदर रूप रस गंध स्पर्श की मात्रा नहीं है। ईश्वर हमारे तरह ईर्ष्या नहीं करता, जलेसी नहीं करता, वो उसके अंदर कोई एनिमिटी नहीं है, वो जस्टिस है, वो किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करता, वो दयालु है पर दया के साथ वो अन्याय नहीं करता, वगैरह वगैरह। तो जब ईश्वर को जब हम रियलाइज या उसकी भक्ति उपासना स्तुति करें, जब उसके उन गुणों की नकारते हुए करें जो उनमें नहीं है, दैट इज कॉल्ड निर्गुण उपासना। जब उसके गुणों की को हमारे ध्यान का धारणा का पर फोकस कर, मन में उसको उसके गुणों पर फोकस करके करें, उसके सगुण उपासना कहते हैं। स्वामी जी लिखते हैं द रिजल्ट इज दैट, इस उपासना का रिजल्ट क्या है? रिजल्ट इज दैट जस्ट एज ए चील स्ट्राइकिंग मैन इज क्योर्ड ऑफ ए चील बाय कमिंग क्लोज टू फायर। एक व्यक्ति ठंड से कांप रहा है, कहीं फंस गया, सर्दी में कपड़े नहीं है, और वो आग जलाता है और आग के पास थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है। यहां जहां गांव में जैसे सर्दी के मौसम में भारत में आप देखेंगे, शहर में भी, तो कहीं भी वो धूम जला करके लोग चारों तरफ बैठ जाते हैं। बैठते ही उसकी ठंड की जो कांप रहा था वो खत्म होता है। इसी तरह जब व्यक्ति सांसारिक दुखों से, परेशानियों से, इंप्यूरिटी से, अपवित्रता से, मेंटली फिजिकली, कभी कभी हमारी जो इंप्यूरिटीज या जो सफरिंग से वो शरीर से नहीं दिखता। बहुत सारे लोगों को फिजिकली बड़े हेल्दी दिखते हैं, बातचीत करो बड़े मुस्कुरा कर हंस के खुल के बात करते हैं, आधा एक घंटा आराम से बैठ के दिल खोल के बात करने लगो तो पता लगता है अंदर कितना दुख है, कितनी परेशानियां है, कितनी दर्द लेकर बैठा है।
वो शेयर नहीं करता, लेकर बैठा है। सच बात तो ये है कि ज्यादातर हमारे जो परेशानियां है वो हमारे मेंटली होती है। जो दुख है, जो दर्द है, जो जो इवन जो सफाई है, हो सकता है हम कपड़ों से बड़े साफ कपड़े पहनते हैं, शरीर को साफ रखते हैं, घर भी बड़ा साफ होता है। एक साफ घर में साफ कपड़े पहनने वाला, साफ शरीर वाला व्यक्ति भी बहुत गंदा हो सकता है। आप उसे 10 मिनट बात करो, पता चलेगा कितनी गंदगियां अंदर भरा है, कितनी बुराइयां लेकर के बैठा है। सबकी बुराइयां तो उसके अंदर दिखता है, तो हर तरह की बुराइयां उसके अंदर है। जेलेसी है, चोरी करने की हिम्मत है, झूठ बोलता है, लोगों को नुकसान पहुंचने की भावना रखता है, दुनिया भर के रखता है। और वो सिर्फ वही फील कर सकता है कि उसके अंदर कितनी बुरा। कभी कभी तो हम मजबूर हो जाते हैं, हम चाहते हैं कि ये चीजें मेरे से हटे, पर वो हटता नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो जिसके अंदर, हमारे अंदर जो बुराइयां है हम नहीं जानते या हम उसे छुटकारा पाना नहीं चाहते, पर अब वो होता नहीं है, वो हमारे सेकेंड नेचर बन चुका होता है। इतना हैबिचुअल पोटेंसी हो चुकी है, संस्कार बन चुका है, मुश्किल होता है। ईश्वर की भक्ति से वो अपने आप दूर होने लगता है। उसके लिए आपके पास कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, कोई मेडिकल साइंस मेरे अंदर की बुराइयों को हटा नहीं सकता, कोई कोई काउंसिलर दूर नहीं कर सकता। यहां आपकी स्पिरिचुअलिटी, ईश्वर भक्ति आपको मदद करता है आपके मन को शुद्ध करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए आपको करेगा। अगर मैं सही मायने में ईश्वर से भक्ति करता हूं, सज्जनों देवियों ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं सचमुच भगवान को मानता हूं, मैं कभी किसी का नुकसान कर ही नहीं सकता, मैं कभी बुरा काम कर ही नहीं सकता। अगर मैं सचमुच ईश्वर को मानता, सचमुच मैं ऊपर से क्या शो करता हूं, मैं कितने बार मंदिर जाता हूं ये मैटर, मैं घर में कितने घंटे पूजा करता हूं ये मैटर नहीं करता, आप क्या करते हैं नहीं करते हैं। पर दिल से अगर मेरी सचमुच ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, तो मैं बुरा आदमी अंदर से बन ही नहीं सकता। ये अचीवमेंट है भक्ति का, ईश्वर को मानने का। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप अच्छे बन चुके हैं, तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है जिसको हम इग्नोर करते हैं। और खाली सिर्फ इतना नहीं है, इंप्यूरिटीज, सफरिंग्स एंड ग्रीफ आर शेकन अप, एंड नेचर एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टर ऑफ द पर्सन बिकम प्योर लाइक दोज ऑफ गॉड। शुरू में जैसे हमने चर्चा की थी, जब आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, कोई सोशल व्यक्ति हो, ग्लैमरस व्यक्ति हो, कोई खिलाड़ी हो, कोई पॉलिटिकल लीडर हो, कोई स्पिरिचुअल लीडर हो, जब आप कहते हैं कि आप उसके फैन हैं, आप उसके दीवाने हैं, मानते हैं, तो आप उसकी तारीफें करते हैं, आप उसकी बुराइयां नहीं सुन सकते। या आप देखेंगे यहां बहुत सारे टेक्सास में लोग होते हैं, ये जो खिलाड़ियों के दीवाने होते हैं, और वो बहस में सुनने को तैयार नहीं, मार कूटने के लिए उड़ जाते हैं। भारत में आप देखिए, ये जो क्रिकेट खिलाड़ियों के दीवाने ऐसे होते हैं कि अगर आप किसी जो तेंदुलकर के फैन है, आप उनके पास बैठ के तेंदुलकर के दो चार बुराइयां कर दे, तो आपकी तो खैर नहीं है। ये जो प्रेम भाव है, आप सिर्फ उसकी अच्छाइयां, आप उसकी तारीफें सुनना चाहते हैं, आप तारीफ करना चाहते हैं, सिर्फ इतना नहीं है, अंदर से उस व्यक्ति के कोने में कहीं भरा होता है, काश मैं भी ऐसा ही बनूं। वो उसी की तरह बाल रखने की कोशिश करता है, वो उसी तरह कपड़े पहनने की कोशिश करता है, वो उसी तरह बोलने की कोशिश करता है, वो उसी तरह खेलने की कोशिश करता है। देखिए आपके बच्चे जो थोड़ा कॉलेज गोइंग बच्चे हो गए, स्कूल गोइंग बच्चे को तो आप करने नहीं देते हो, तो जो कॉलेज गोइंग बच्चे हो गए, देखिए उनके हॉस्टल में या जो अकेले रहते हैं वो फोटो लगाते हो, सभी नहीं बहुत सारे देखेंगे, सब वो फिल्म स्टारों के वो प्लेयर्स के फोटो लगाए हुए भरे रहते हैं, बहुत सारे बच्चे रखे रहते हैं, जो पॉप सिंगर्स के जिसको जो जो जिसको पसंद है लगाए रखे रहते हैं। और उसी की तरह वो बिहेव करना चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब है, जहां आप जेन्युइन प्रेम करते हैं, आप उसकी तारीफें भी करते हैं। वो थोड़ी थोड़ी ऊंची भाषा में हम उसको बोलते हैं भक्ति करना, स्तुति करना, पर रियल लाइफ में आप उसकी तारीफें करते हो, अप्रिशिएट करते हो, उसको ग्लोरीफाई करते हो, फिर आपके उसके साथ कम्युनियन होता है, आप उसको मिलना चाहते हो। जो जिसके आप फैन हो, अगर आपको कहीं मीटिंग में कहीं प्रोग्राम में मिल जाए, आपने हैंडशेक कर दिया, उस दिन मैंने एक बताया था तो मुझे अपने मुझे याद नहीं रहा, आज आए कि नहीं, श्रीवास्तव जी बोले कि आपको बताए यहाँ चार पांच कुछ साल पहले अमिताभ बच्चन आया था और कुछ लोगों उनसे हैंडशेक किया, तो एक दो लोगों ने कहा कि हम तो तीन दिन से हाथ धोए भी नहीं है इस हाथ को। तो इतना उनके प्रति प्रेम है, और पहली बार जिस व्यक्ति को इतना प्यार किया, इतना सम्मान दिया, इतने जिसकी तरह वो हाथ मिला दिया, तो लगता है वो कहीं छूट ना जाए। जेन्युइन प्रेम होता है, प्यार होता है, फिर हम उसी की तरह बनने की कोशिश करते हैं। भक्ति यही है, जब सचमुच हम ईश्वर से वो जो जेन्युइन लव जब वहां ट्रांसफर हो जाए, तो फिर हम भी उसी तरह बन जाएंगे, फिर उसके भी जो क्वालिटीज है वो हमारे अंदर नेचुरल, जैसे जिस फिल्म स्टार का मैं दीवाना हूं, मैं उसी के तरह बाल रखने की कोशिश करूंगा, उसी के तरह कपड़े पहनूंगा, उसी के तरह बोलूंगा। अगर मैं किसी पॉलिटिकल लीडर का दीवाना हूं तो उसी के तरह कपड़े पहनूंगा, उसी के तरह जैकेट पहनूंगा, उसी के तरह कोट पहनूंगा। मैं किसी स्पिरिचुअल लीडर का दीवाना हूं, मैं उसी के तरह बाबा बनूंगा, उसी के तरह चलूंगा। जब आप ईश्वर के दीवाने हो जाएंगे तो आप उसी की तरह होने लगेंगे। कहीं गलत फिल्म मत रहिए कि आप ईश्वर बन जाएंगे, क्योंकि कोई तेंदुलकर का फैन कभी तेंदुलकर नहीं बनता, वो अपने लोकलिटी में खिलाड़ी बन जाता है। कोई शाहरुख खान का फैन कभी शाहरुख खान नहीं बनता, पर हम उसी की तरह बनने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत गुण धर्म आ जाता है। ईश्वर के प्रति सही भक्ति करने से ईश्वर के भी कुछ गुण धर्म हमारे अंदर इनडायरेक्टली आ जाते हैं। वो ईश्वर जैसा न्यायालु है, ईश्वर जैसे सबका एक भला चाहने वाला है, वगैरह वगैरह, वो सारे क्वालिटीज आ जाते हैं अननोइंगली, नेचुरली अपने अंदर, हमारे अंदर वो आ जाते हैं। दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ थ्री फोल्ड परफॉर्मेंस ऑफ वर्शिप, स्तुति, अप्रिशिएशन, प्रार्थना, प्रेयर एंड कम्युनियन, मतलब उपासना। तो जहां से हमने शुरू की थी बहुत पहले, कि ईश्वर भक्ति का रिजल्ट यह नहीं है कि ईश्वर खुश होता है और हमारे लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कृपा करने देता है। तो प्रश्न था कि फिर भक्ति करने का क्या फायदा अगर ईश्वर कोई हमारे लिए एक्सक्लूसिव कृपा नहीं करता हो। ईश्वर की कृपा अनंत है, बट इट्स इंक्लूसिव है, वो सबके प्रति बराबर है। मुझे नहीं मिलता, वो मेरी प्रॉब्लम है, मेरा घड़े में छेद है, मेरा घड़ा बंधा बंद है, उसका मुंह नहीं है। ईश्वर की भक्ति से मैं उसके लायक बनता हूं, मेरी इंप्यूरिटीज दूर होते हैं, मेरे जो प्रॉब्लम्स है वो क्लियर होते हैं, तब मैं उसके लायक बनता हूं। Therefore it is appropriate for all, हर इंसान का ये कर्तव्य है वो ईश्वर की भक्ति करे, उसकी प्रशंसा करे, उसकी प्रार्थना करे और उसके साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करे। Living out the other result, स्वामी जी कहते हैं छोड़ दीजिए, ईश्वर भक्ति से क्या क्या फल मिलेंगे वो तो सैकड़ों अद्भुत हैं। सिर्फ एक छोटी सी चीज है, लिविंग आउट द अदर रिजल्ट्स दैट accrue फ्रॉम डिवाइन वर्शिप, द गेन इन स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इन सच। वो व्यक्ति जो सचमुच ईश्वर को दिल से भक्ति कर, मैं सचमुच बार बार इसीलिए बोलना पड़ता है क्योंकि यहीं पर सारी गड़बड़ी झाला यहीं पर है, इस सचमुच में ही सारा 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 मिस्ट्री छुपा हुआ है। तो हमें वो खंगालने की जरूरत है। मेरी जो भगवान के प्रति भक्ति है वो सचमुच है कि जबरदस्ती है या और किसी कारण से है। जब सचमुच वो भक्ति होने लग जाए तो इतना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हमारे अंदर आता है। स्वामी जी लिखते हैं इन सच दैट इवन द अप्रोच ऑफ पेन और सरो ऑफ द ग्रेटेस्ट मैग्निट्यूड कैन नॉट डिस्टर्ब द मेंटल ट्रैंक्विलिटी ऑफ द डिवोटी। दुखों का पहाड़ भी टूट जाए तो वो व्यक्ति जो रियल डिवोटी है वो अंदर से टूटता नहीं है। उस दुख को धारण करने की क्षमता उसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। हमारे आसपास बहुत सारे लोग होंगे वो छोटी छोटी चीजों में टूट जाते हैं। घर में कोई बीमार हुआ तो वो टूट जाते हैं। नौकरी में कुछ गड़बड़ियां हुई बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में चले जाते, डिप्रेशन में चले जाते हैं, दवाइयां खानी पड़ती है। किसी ने कुछ बोल लिया तो बेड पकड़ लेते हैं, बीपी हाई हो जाता है, स्ट्रोक पकड़ लेते, स्ट्रोक हो जाता है, क्योंकि अंदर इतना कमजोर है। वो कमजोरी को दूर करने के लिए कोई मेडिकल साइंस के पास दवाई नहीं है सिवाय कि हमारे जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े सिवाय कि ईश्वर की भक्ति। जब ईश्वर की भक्ति सचमुच होने लगती है, स्वामी जी कहते हैं जो उसके फायदे हैं वो तो गिनाया गया, जो होगा जो बताया गया, पर तो जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि वो व्यक्ति इतना मजबूत होता है, अंदर से इतना मजबूत होता है कि बड़े से बड़े दुखों को भी वो बड़े हल्के से झेल लेता है। उसकी मन की जो संतुलन है, जो बैलेंस है, जो ट्रैंक्विलिटी है, जो शांति है, वो बनी रहती है। बड़े से बड़े परेशानी में भी वो शांत रहता है। यही फर्क है एक ग्रेट मैन में एक एवरेज मैन में। जो ग्रेट बड़े लोग होते हैं, जो महान होते हैं, जो एवरेज होते हैं, वो ग्रेट लोग कोई ग्रेट वर्क्स नहीं करते हैं। नो वन कैन बिकम ए ग्रेट मैन डूइंग ग्रेट वर्क्स। ग्रेट वर्क कुछ नहीं होता है, वही काम जो हम करते हैं जब वो दूसरी मेंटेलिटी में करता है वो ग्रेट हो जाता है। वो कोई बड़े काम नहीं करने की जरूरत है। इज एबल टू बियर इट मोस्ट पेशेंसली इज दिस ए माइनर थिंग। स्वामी जी पूछते हैं क्या भक्ति के रिजल्ट के रूप में इतना काफी नहीं है। जब आप पूछते हो कि ईश्वर की भक्ति क्यों करे, ईश्वर अगर कृपा नहीं करता है, क्या इतना काफी नहीं है कि आप मेंटल इतना स्ट्रांग होते हैं। जो नेचुरली हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं ये नेचुरली है। कोई व्यक्ति दावा नहीं कर सकता कि मैं बहुत पैसा वाला हूं, मेरे जीवन में दुख नहीं है, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मेरे जीवन में दुख नहीं है, मैं बहुत बड़ा देश का राष्ट्रपति हूं, मेरे जीवन में दुख नहीं है। असंभव है, दुख नेचुरल है, पर उस दुख को सहने की शक्ति इस ईश्वर भक्ति से आती है। क्या ये सब यही काफी नहीं है ईश्वर भक्ति करने के लिए? पर इसका अर्थ नहीं कि इतना ही मिलता है, बहुत कुछ अचीव रिजल्ट होते हैं, पर इतना भी काफी है। Besides, a man who doesn't worship God is ungrateful as well as most foolish person. जो ईश्वर को भक्ति नहीं करता दुनिया में उससे ज्यादा अनग्रेटफुल व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। एक अच्छा आदमी का लक्षण होता है कि वो ग्रेटफुल होता है। लेकिन रास्ते में आप जाते हैं और आपको लेन चेंज करना होता है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, पर आपको लेन चेंज करना है, जब शाम पीछे वाला आपको देखता है कि आप चेंज करने की कोशिश करते हो, थोड़ी देर के लिए हल्का ब्रेक लगाता है तो आप लेन चेंज कर देते हैं, तो आप ग्रेटिट्यूड से भर जाते हैं। उसको आप हाथ हिला के जैसे भी आप शो करते हैं कि द थैंक यू। छोटी छोटी चीजों के लिए हमारा दिल भरता है, भरना चाहिए। अगर जिसके अंदर ये नहीं भरता उसके अंदर इंसानियत कम है। और जिस ईश्वर ने हमारे पैदा होने से पहले हमें सब कुछ मुहैया कराया, ये सूरज, ये चांद, ये लाइट, वाटर, एयर, फेयर, ये ग्रेन्स, ये ट्री, ये प्लांट्स, ये ऑक्सीजन, जो कुछ जैसा चाहिए, इतना सुंदर शरीर, मां बाप, परिवार, सोसाइटी, स्कूल, कॉलेज, पूरा का पूरा एनवायरमेंट हमारे पैदा होने से पहले रेडी था हमें लाइफ को एंजॉय करने के लिए। अगर हम मां बाप के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, हम ट्रैफिक में कोई हमें रास्ता दे देता है हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, तो हम उस ईश्वर के लिए नहीं हो सकते। तो इससे बड़ा कृतज्ञता क्या, कृतज्ञता क्या हो सकती है? और फुलिश इसीलिए है कि जब आप ईश्वर को सचमुच भक्ति करते हो, आपको इतनी सारी फायदा होता है, ना समझ व्यक्ति होगा जो इतने फायदा उठाना नहीं चाहेगा, बिकॉज इट इज नथिंग बट एक्सट्रीम इनग्रेटिट्यूड एंड फुलिशनेस टू फॉरगेट द काइंडनेस ऑफ दैट परमात्मा सुप्रीम सोल हु हैज फ्रीली गिवन अवे ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ हिज क्रिएचर्स। भगवान का दिया हुआ चीज को आपके घर तक पहुंचा करके सरकार आपसे टैक्स ले जाता है, आप पानी पीते तो भी सरकार टैक्स ले जाता है, पर ईश्वर की व्यवस्था में आपको कहीं कोई देने की था ही नहीं। आप सूरज की रोशनी फ्री लीजिए, पानी फ्री लीजिए, हवा फ्री लीजिए, माँ बाप फ्री लीजिए, सब फ्री में दिया। उसके बावजूद भी अगर ग्रेटिट्यूड भी ना दिखा सके, इससे ज्यादा बेईमान हम क्या हो सकते हैं? और ध्यान रखिए, जो लोग के ईश्वर भक्ति अंदर नहीं होती है, या दूसरी भाषा में कहें, जितनी ज्यादा ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम और भक्ति होगी, उतना ज्यादा हम अच्छे इंसान बनेंगे। अच्छे इंसान इन द सेंस नहीं कि आप दूसरों के लिए अच्छे बनाएंगे, हम खुद के लिए सुख शांति समृद्धि के लिए रास्ता खोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ध्यान से सुना। अगली बार एक दूसरे विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।